पृष्ठ संख्या 57। निराला के आत्मदर्शन से संबंधित इन गीतों को भी हम दो भागों में अध्ययन की सुविधा के लिए विभाजित कर सकते हैं। पहला रूप उन गीतों का है जो उनके रचनात्मक संघर्ष को प्रतिबिंबित करते हैं, जिनमें अपनी रचना समृद्धि की लगातार उपेक्षा से आहत होकर निराला ने उसे स्वीकृत कराने, उसके सौंदर्य, उसकी तेजस्विता को उद्घाटित करने के लिए लेखों के अलावा कविता का माध्यम भी इस्तेमाल किया है। अपने लेखों में जहाँ वे अपने हमलावरों का डटकर जवाब देते हैं और अपनी काव्य समृद्धि की महत्ता का उद्घाटन करते हैं, वहीं अपनी इस रंग की कविताओं में वे अपनी रचनात्मक ऊर्जा का आह्वान करते हैं, अपनी महत्ता पर गर्वोक्ति व्यक्त करते हैं तथा अपनी मौलिक तेजस्विता की अपराजेयता का आत्म स्वीकार प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए इस प्रकार के गीतों में कहीं भी दैन्य, पराजय या अपने प्रति अविश्वास की अभिव्यक्ति नहीं दिखाई देती, बल्कि इसके ठीक विपरीत अपने रचना जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक अपनी प्रतिभा की इसी अपराजेयता की उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। दूसरा रूप उन गीतों का है जिनमें दैवी या सांसारिक विपत्तियों के अंधेरे कोटर में टहलते हुए छरित होते निरंतर टूटते जाते भाव संवेदन की अभिव्यक्ति हुई है। अवसन्नता से लेकर गहरी उदासी, आत्मक्षय, अपमान और पराजय की मुखर अभिव्यक्ति इन गीतों में हुई है। आत्मक्षरण और पराजय की इसी मनोभूमि से निराला दुख कातर होकर मृत्यु की भावभूमि में और अंततः प्रपत्ति भाव में उतरते हैं। निराला का जितना ही विरोध उनके रचना जीवन के शुरू में हुआ है, उतना ही गहराई से उन्होंने अपनी तेजस्वी काव्य प्रतिभा में अपना आत्मविश्वास प्रकट किया है। परिमल में ही और उससे भी पहले अनामिका नामक अपने पहले संग्रह में ही वह अपने दुखी भाई की छाया अपने रचना जीवन में प्रविष्ट पाते हैं और उसे अत्यंत उल्लास और आत्मविश्वास के साथ अपनी रचनात्मकता में संजोते हैं। इसके लिए चाहे उन्हें जो कुछ भी खोना क्यों न पड़े, वह अपनी इस निजी, विशिष्ट और मौलिक शैली का त्याग नहीं कर सकते। निराला, मैंने मैं शैली अपनाई कहकर इसकी गर्वोक्तिपूर्ण घोषणा अपने रचना जीवन के शुरू में ही कर देते हैं। यही उच्छल पवित्र और समृद्ध गर्व परिमल में भी अभी न होगा मेरा अंत में भी अव्यक्त हुआ है। कवि को अनंत आत्मविश्वास है कि उसी के अविकसित राग से सारी दिशाएं, पृष्ठ संख्या 58, विकसित होंगी। उसी की स्वर झंकार सारे वायुमंडल में एक दिन छा जाएगी, चाहे उसका लाख विरोध हो। उसे स्वयं अपनी काव्य तेजस्विता की अपराजेयता में अनंत विश्वास है। इसी अपराजेय वाग्मिता और काव्य कौशल को वह बार बार अनेक रूपों में अपने गीतों में व्यक्त करते हैं। संघर्ष जितना ही तीखा होता जाता है, उनकी यह अपराजेय मनाही स्थिति उतनी ही गहरी और दृढ़ होती जाती है। कभी बार बार अपने को छिप छिप कर ललकारने वालों को प्रत्युत्तर देने के लिए अपनी काव्य ऊर्जा का आवाहन करता है। कभी सामने वालों की मूढ़ता पर हंसता है, व्यंग्य करता है, कभी अपनी अपराजेयता पर खुश होकर गर्वोक्ति करता है, फिर अपनी रचनात्मकता की समृद्धि का उत्साह पूर्वक प्रतिशोध करता है। एक फिर सितार संवार लो, बांध कर फिर ठाट अपने अंक पर झकार दो, शब्द के कवि दल खुले, गति पवन भर कांप थर थर, भीड़ भ्रमरावल दुले, गीत परिमल वहें निर्मल, फिर बहार बहार हो। दो ईर्ष्या कुछ नहीं मुझे यद्यपि, मैं ही बसंत का अग्रदूत। तीन और छबिरे यहाँ, नूतन भी कवि रे यहाँ, समझ तो सही जब भी यहाँ, नहीं गगन वह नहीं नहीं, यज्ञ है यहाँ जैसे देखा पहले होते अथवा सुना, किंतु नहीं पहले की यहाँ कहीं हवि रे यह और छवि। पृष्ठ संख्या 59। तीनों उदाहरण नई अनामिका से लिए गए हैं। पहले में कवि अपनी स्वर झंकार का आवाहन करता है, दूसरे उदाहरण में अपनी अपराजेयता और अग्रगामिता की बेलाग गर्वोक्ति है, क्योंकि निराला ने संपूर्ण रचना द्वारा इसे सिद्ध कर दिया, इसलिए यह गर्भोक्ति हमें आज खोखली न लगकर भरी पूरी सच्ची लगती है। तीसरे उदाहरण में कवि अपनी नितांत मौलिक अदीयता की घोषणा करता है, दूसरे को बता रहा है समझ तो सही, लोग क्या ढूंढते हैं, पारंपरिकता, अपनी रुचि की अनुकूलता। जब कोई रचनाकार उनकी इन संकीर्ण मांगों को पूरा नहीं करता तो वह बौखला उठते हैं, इसी बौखलेपन में वह या तो उसे झूठा अमौलिक करार देते हैं या उसकी गलत व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। निराला के साथ कितनी बार ऐसा हुआ, इसके लिए पाठकों को उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। ऐसे ही पारंपरिक रुचि वालों ने निराला द्वारा परिवर्तित प्रचारित मुक्त छंद का मजाक उड़ाते हुए उसे रबड़ छंद और कछुआ छंद की संज्ञा दी थी। ऐसे मूर्खों की निराला ने अपने निबंधों में अच्छी खबर ली है। यहाँ इस कविता में निराला अपनी अद्वितीयता का गर्वपूर्ण बखान कर रहे हैं, यह दूसरा ही सौंदर्य है। तुमने इसकी ताजगी, इसकी सर्वथा नूतनता और अद्वितीयता को नहीं जाना। यह कवि जहाँ खड़ा है उस बिंदु पर कोई दूसरा तुम्हें खड़ा दिखाई नहीं देता। उसकी इस सर्वांत मौलिकता पर तुम्हें इसलिए आश्चर्य हो रहा है क्योंकि तुम्हारी रुचि, तुम्हारी मानसिक बनावट एक विशेष सांचे में ढली हुई है। तुम इसी सांचे में इस कविता को भी ढाल कर समझने की कोशिश में हो, इसीलिए तुम्हें अजूबा लगता है। समझ तो सही, यहाँ पर पारंपरिकता, रुचि की अनुकूलता कहीं नहीं है। यह काव्य ऊर्जा का एक नया धरातल है, यह एक नई और अभी तक अनजानी समिधा से प्रज्वलित की हुई काव्य अग्नि है। यह अग्निनाग्नि समिध्यते कवि का नया रूप है। इसको समझने की बजाय तुम उसी तरह की देखे या सुने हुए अग्निहोत्र की तलाश में हो, वही शांकल्य ढूंढ रहे हो, उसी पुरानी काव्य भूमि और काव्य आकाश की खोज में हो। समझो तो सही, यह दूसरा ही सौंदर्य है। इसे समझने और सराहने के लिए तुम्हें रचना के नए मानदंडों की तलाश करनी होगी। इसी को कवि ने अपने अंतिम जीवन दिनों में मल्ल मल्ल की मारे मूर्छित हुई निशाने चूक गए हैं कहकर अव्यक्त किया है। जिन्होंने भी उसकी अद्वितीयता को नहीं पहचाना वे उस पर प्रहार करते रहे। निराला की अपराजेयता काव्य ऊर्जा अंततः इन सारे प्रहारों को सहकर निष्कलंक रूप में आज हमारे सामने है। कवि इसी को भीष्म के बिंब से अभिव्यक्त करता है। ठीक है कि यहाँ शरों की कठिन सेज पर लेटा हुआ चुप है, अपने सांसारिक जीवन के अंतिम दिन गिन रहा है। ठीक है कि उसकी ढाल की तरह बनी हुई त्वचा झूल गई है, लेकिन उसे कोई क्षोभ नहीं है। उसकी अद्वितीयता अंततः प्रमाणित हो गई है। सारे निशाने जो उस पर तक तक कर मारे गए थे अंततः चूक गए हैं। उसकी तेजस्विता का पृष्ठ संख्या 60 प्रकाश कहीं भी धूमिल नहीं पड़ा है। उसे जितना ही बहिष्कृत किया गया उसके भीतर की ऊर्जा उतनी ही उद्भासित होती गई। उसका त्याग, उसकी अनंत साधना अंततः सफल हुई। एक गीत से ध्वनित अंतर फैला फेनिल कल स्वर, सत्य का तरंग मुखर रहा वही सुधर जिया, प्राणों में परम स्पंद भाषा में सुषम छंद भरा चरण गगन मंद जीवन विष विषम लिया। दो वही राह देखता हूँ हंस हंस कर, आती है धूप छां लस लस कर, जड़ता तामस संशय भय बाधा अंधकार, दूर हुए दुर्दिन के दुख खुले बंद द्वार, जीवन के उतरे कर आँखों को दिखा सार, छुई बीन नए तार कस कस कर, त्याग तपा व्रत की शिक्षा ली संभले जनगण, पीठ नदी अरि को निःशरण किया मृत्यु वरण, इसी भाव से आया जीवन का सिंधु तरण, निकले मानव गृह से फंस फंस कर। ठीक है कि अब चाल मंद हो गई है, लेकिन वैषम्य का विषय पीकर भी विश्वत्व खंडित नहीं हुआ। गीतों के फेनिल स्वरों में सब कुछ गुंजायमान हो गया। अब कहीं जड़ता, भय, संशय, अंधकार नहीं है। फिर से नए तार कसकर कवि ने नया स्वर झनकार किया। संघर्ष अंततः खत्म हुआ और जीवन का सार उसकी मुट्ठी में आ गया। जो विरुद्ध थे वे जन भी अंततः संभल गए, कारण कि उसने कभी शत्रु को पीठ नहीं दिखाई। और इसी तरह लड़ते लड़ते एक दिन कवि ने पाया कि जीवन का अंत निकट आ गया। अपनी रचनात्मकता का यही अपराजेय वर्णन इस तरह के गीतों में कवि ने किया है। उसे मृत्यु के आने का डर यहाँ नहीं है, वह अपने अमृत को पहचानता है। संपूर्ण इतिहास में उसे अपनी जगह मालूम है और वह अपनी जगह की अद्वितीयता को खूब अच्छी तरह जान गया है। इस तरह कवित्व के संघर्ष के संबंध में यह आत्मदर्शन किसी भी जर्जरता, नैराश्य, अकेलेपन और अपमान से पीड़ित नहीं है। इन गीतों में अपने ही रचना संघर्ष को कवि ने विभिन्न ध्वनि छवियों में आंकने का सफल प्रयास किया है। निराला अपने कवित्व की इस अपराजेय अद्वितीयता को पृष्ठ संख्या 61 पहाड़ के बिंब में साक्षात्कृत करते हैं। उनकी रचनात्मकता के भीतर से ही वह रस का स्रोत झरेगा जिससे सैकड़ों जीवन प्राण ग्रहण करेंगे। उसी की ऊंचाई पर से जीवन के सौंदर्य और प्रकाश का दर्शन सारे मनुष्य करेंगे। उसी की स्वच्छता, पावनता, शीतलता और रंगमयता से जीवन वैविध्यपूर्ण, सघन और पूर्ण और रंगमय होगा। उसके कवित्व की ऊंचाई ही अंत में जाकर मनुष्य के मन में सिंह के से अपराजेय साहस का संचार करेगी, क्योंकि उसने कभी कोई लड़ाई छिपकर नहीं लड़ी, हमेशा आमने सामने अपनी प्रतिभा और वर्चस्वता के बल पर यह रचनात्मक अद्वितीयता उपलब्ध की, क्योंकि उसका नैतिक पक्ष सबल और निसंशय है। तू कभी न ले दूसरी आड़, शत्रु को समर जीते पछाड़, सैकड़ों फलेंगे फूलेंगे, जीवन ही जीवन भर देंगे, झरने फूटेंगे उबलेंगे, नर अगर कहीं तू बन पहाड़, तेरी ही चोटी पर चढ़कर देखेंगे लोग दृश्य सुंदर, उतरेंगे रवि शशि के सुचिकर, नीचे से ऊंचा सर उभाड़, हिम का किरीट होगा उज्जवल, बदलेंगे रंग पीठ प्रतिपल, जब होगा जीवन का संबल, पद तल शत सिंहों की दहाड़। लेकिन निराला के भीतरी और बाहरी संघर्षों के फलस्वरूप उनके रचनात्मक जीवन में जो तीव्र संघात उत्पन्न होता है, उसकी अभिव्यक्ति ही दूसरे तरह के आत्म साक्षात्कार के गीतों में सर्वत्र एवं गहरी और सन्नता के रूप में हुई है। इन तीव्र आघातों का परिणाम उनकी रचनात्मकता की उर्वर भूमि में एक गहरे निरंतर कटाव और आत्मक्षरण के रूप में सामने आता है। यह आत्मक्षरण उनमें एक गहरे नैराश्य और एकाकीपन की सृष्टि करता है। नैराश्य और एकाकीपन की इसी तीखी अनुभूति से निराला के मन में एक विचित्र सी निरर्थकता, पराजय, अपमान और आत्मजर्जर होने की मना स्थिति कुंडली मार कर बैठ जाती है। इन गीतों में आत्मजर्जरता के इसी सर्व का विषैला दंश कवि ने अभिव्यक्त किया है। धीरे धीरे अंधेरे कोटर उसके मन में फिर जन्म लेने लगते हैं। उनका पृष्ठ संख्या 62 आकार इतना बड़ा होता जाता है कि वह कवि के संपूर्ण व्यक्तित्व को ही निगल लेना चाहते हैं। संभवतः इसी मानसिक स्थिति में निराला में मृत्यु का डरावना एहसास जन्म लेता है और अंततः वह मुक्ति के लिए शरणागति और भक्तिमयी प्रार्थना पर उतर आते हैं। तन मन के लगातार मार खाते रहने पर निरंतर टूटते जाने की यही एकमात्र सच्ची परिणति हो सकती है। निराला ने इसे सहज रूप में स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उनकी सारी मानसिक बनावट में सत्य को झुठलाने का स्वभाव कहीं भी दिखाई नहीं देता। इस तरह की कारुणिक अवसन्नता और एक गला देने वाली उदासी का साक्षात्कार निराला अपने रचना जीवन के प्रारंभ से ही करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके जीवन के प्रारंभिक काल से ही उन पर दैवी और सांसारिक विपत्तियों का पहाड़ टूटना प्रारंभ हो गया था। इन्हीं दुखांतों और विडंबनाओं की उच्छल अविस्मरणीय अभिव्यक्ति निराला के इन गीतों में हुई है। यह, जैसा कि मैंने पीछे अभी कहा है, एक प्रकार सघन प्रखर आत्मदर्शन है जिससे कवि की मुक्ति संभव नहीं दिखाई देती। मुक्ति सिर्फ इस तीखी पीड़ा को, इस नरक यात्रा को रचना में लगातार बदलते रहने में ही संभव है। मोह भंग और उससे उत्पन्न अकेलेपन की तीखी पीड़ा भरी नरक यात्रा की अभिव्यक्ति ही आत्म साक्षात्कार के इन गीतों में हुई है। अपने रचना जीवन के प्रारंभ में कवि अपने एक अकेलेपन से पूर्णतया आत्म जर्जर नहीं दिखता, बल्कि उसे एक जीवन सत्य के रूप में स्वीकार करता है। इसे अपनी नियति मानकर इस असन्नता और अंधेरे एकाकीपन को वह सारे मानव समाज की नियति के रूप में चित्रित करता है। उसका व्यापक प्रसार समझ कर ही इस एकाकीपन और असन्नता को भुगतने में वह अपने को अकेला नहीं पाता। अपनी नियति को मनुष्य मात्र की सामूहिक नियति मानकर भुगतने में जो एक शामिल होने का भाव है, वह निराला के इस तरह के गीतों की करुणा में भी सहनशीलता की उच्चशयता को व्यक्त करता है। देख चुका जो जो आए थे चले गए, मेरे प्रिय सब बुरे गए सब भले गए, क्षण भर की भाषा में नौ नौ अभिलाषा में, उगते पल्लव से कोमल शाखा में, आए थे जो निष्ठुर कर से मले गए, मेरे प्रिय सब बुरे गए सब भले गए, चिंताएं बाधाएं पृष्ठ संख्या 63 आती ही हैं आए, अंध हृदय है बंधन निर्दय लाए, मैं ही क्या सभी तो ऐसे छले गए। एक गहरे अंधेरे एक भयावह विनाश की कारुणिक अनुभूति इस कविता में व्यक्त हुई है। यह अपनी नियति को जानना है, अपने तय की उसका सीधा साधा सहज स्वीकार है। उससे लड़ने की भी आकांक्षा यहाँ व्यक्त नहीं हुई है, केवल उसे व्यक्तित्व पर झेलने और सहने की अनुभूति है। कहीं उससे मुक्ति नहीं है, मुक्ति सिर्फ उसे जानने, समझने और अपने ही निकट स्वीकार कर लेने में है। यह एक प्रकार के स्वप्न भंग की पश्चमनः स्थिति है, इसलिए कवि यहाँ ठगा हुआ खड़ा नहीं दिखता। उसे अपनी नियति का सच्चा साक्षात्कार हो चुका है। यह निष्ठुर कर कौन है? वही अदृश्य नियति, वही अनंत विनाश जिसने कवि के सघन संगठित काव्य जीवन को धीरे धीरे खुरचना शुरू कर दिया है। एक निरंतर गहरा होता जाता कटाव, एक अंधेरा खड्ड धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है। कभी अपने समतल उर्वर रचना जीवन से कटाव के उसी अंधेरे खड्ड में उतरता हुआ दिखाई देता है। धीरे धीरे उसमें एक डुबो देने वाली कारुणिक जर्जरता का एहसास बढ़ने लगता है। उसे लगता है कि अपने इस आत्मक्षय को वह किसी भी तरह रोक नहीं सकता। अपनी इसी कारुणिक विवशता का साक्षात्कार बार बार निराला ने अपने इन गीतों में किया है। अपनी नियति की इतनी समीपता और सहज पहचान शायद ही किसी दूसरे भारतीय कवि ने इतनी शक्ति और काव्य ऊर्जा के साथ व्यक्त की है। अपने इस आत्मक्षय को व्यक्त करने के लिए निराला बार बार वृक्ष वन झरने का बिंब लेते हैं। वही हरा भरा जीवन वन अब दमन दाह से मुरझाया रहता है। वही हरी भरी उर्वर काव्य भूमि रसहीन जलहीन होकर सूख गई है। यहाँ तक कि सारे ताल तलैये धीरे धीरे सूख गए हैं। उसमें जो वृक्ष कवि ने रोपा था उसे भी सींचने के लिए जल नहीं है। सारा अतल रस स्रोत कहीं किसी गहरी मरुभूमि में विलुप्त हो गया है। सारी धरती में गहरी दरारें पड़ गई हैं। जीवन एक चिरकालीन रुदन में बदल गया है। कवि जैसे प्रार्थना करता है कि अब वह मुक्ति नहीं चाहता। उसकी दुख जर्जरता इतनी बढ़ गई है कि वह अपने दुख निशा की सुबह भी देखना नहीं चाहता। जर्जर जीवन का रथ कीचड़ में फंस गया है। धीरे धीरे अंधकार घिर रहा है। उसका प्रखर प्रज्वलित सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है। जिस ओजस्वित प्रकाश से प्रोद्भासित उसकी प्रतिभा अपनी चकाचौंध से हर पल लोगों को आश्चर्यचकित करती रहती है, वह उसी अंधेरे खड्ड में विलीन होती जा रही है। चारों ओर अंधेरे, अपमान, दुख, असन्नता और उदासी का घटा टोप मुंह फाड़े खड़ा है। मन की इसी गला देने वाली उदासी का चित्रण बार बार निराला अपने इन गीतों में करते हैं। पृष्ठ संख्या 64। एक वेल विष की फैल कर जो खिल गई, गंध जिसकी हवा में उर्मिल गई, वह बिना समझे हृदय में हिल गई, कर गई अपमान। दो अस्ताचल रवि जल छल छल छवि, अस्तब्ध विश्व कवि जीवन उन्मन। तीन मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांध बेला, पके आधे बाल मेरे हुए निष्प्रभ गाल मेरे, चाल मेरी मंद होती आ रही हट रहा मेला। जानता हूँ नदी झरने जो मुझे थे पार करने, कर चुका हूँ हंस रहा यह देख कोई नहीं भेला। कहीं एक जहर का पौधा था, चुपके चुपके अपनी जहरीली गंध से जंगल की हवा को दूषित करता हुआ, वही अदृश्य नियति जो पहले से ही कहीं घात लगाए बैठी थी, निराला यहाँ हल्का सा मजाक भी करते हैं। बैठी थी तो बैठी रहती, उसे समझना चाहिए था कि उसका शिकार कौन है, उसे किस पर अपने पंजे साफ करने चाहिए। इसमें निराला यह ध्वनित करना चाहते हैं कि इस तरह के आघातों के लिए मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं था, क्योंकि मेरा जीवन सच्चाई के लिए था, उसमें कोई कायर ग्रंथ नहीं थी, उसकी कोई अनैतिक दिशा नहीं थी। इसीलिए निराला को आहत होने पर गहरे अपमान का अनुभव होता है, और वह चुपचाप अस्ताचलगामी अपने सूर्य को देखते हुए स्तब्ध हतप्रभ अपने अंदर उठते हुए उस घने अंधकार का साक्षात्कार करते हैं। जीवन में धीरे धीरे उतरती हुई यह सांझ उदासी उन्हें एकाकीपन की कठिन दुर्निवार अनुभूति से भर देती है। तीसरे उदाहरण में फिर उसका सीधा सादा सहज और तटस्थ स्वीकार है। कुछ इस तरह की सहजता कथन में है कि पूरी कविता निराला की कारुणिक जर्जरता का काटता। पृष्ठ संख्या 65। हुआ प्रभाव मन पर छोड़ जाती है। पूरा जीवन पार करके कवि जहाँ खड़ा है पाता है कि कोई नाव नहीं है, कहीं कोई मुक्ति पथ नहीं है। एक गहरी उदासी भरी हंसी से कवि अपनी इस नियतिजन्य विवशता का दर्शन करता है। इसी का अगला चरण माँ अपने आलोक निखारो, नरको नरक त्रात से वारो, जैसे प्रार्थना के करुण गीतों में हुआ है। निराला जानते हैं कि नियत की इस विवशता से कहीं कोई निस्तार संभव नहीं है। सारी स्थितियां साफ हैं, शरीर और मन दोनों जर्जर हो गए हैं, चाल मंद हो गई है। इसी को निराला ने एक दूसरे गीत में भरा चरण गमन मंद कहकर पुनः अव्यक्त किया है। आत्म चरण और अकेलेपन की तीखी अनुभूति के सहज तटस्थ स्वीकार के कारण ही यह गीत अपनी सारी उदासी को हमारे अंदर प्रतिमूर्तित कर देता है। इसीलिए इसकी आत्मचरितात्मकता एक सर्वजनीन अनुभव में बदल जाती है। इसी रूप में निराला हमारे निजी एकांत क्षणों के कवि बन जाते हैं, क्योंकि निराला का रेत होना, सूखते जाना, रिक्त होते होते एकदम विलुप्त होने के कगार पर पहुँचने की अनुभूति अपनी तीखी रचनात्मक संवेदना के कारण हमारी सबकी संवेदना का अंग बन जाती है। वह मात्र उक्ति कथन न रहकर रचा हुआ सार्वजनीन अनुभव बन जाता है। रचनात्मकता की इसी सघनता के कारण अपने रचनात्मकता की इसी सघनता के कारण उनके अपने निजत्व की यह पहचान व्यक्ति व्यक्ति की पहचान का रूप ले लेती है, क्योंकि निराला अपने हर व्यक्तिगत अनुभव को रचनात्मक अनुभव में सहज ढंग से अनायास परिणत कर देते हैं। उन्हें बार बार अपनी काव्य ऊर्जा की तेजस्विता का बीता हुआ एहसास घेर घेर लेता है। आज उसका खंडहर सिर्फ वर्तमान है, चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश नहीं है, बल्कि उसकी जगह सर्वत्र अंदर बाहर लीलने वाला अंधकार जड़ जमा कर बैठ गया है, जिसमें कवि स्वयं विलीन हो गया है। वही मुक्ति रहितता की मना स्थिति, वही अपने दान का तीखा फालता हुआ अनुभव, वही उसके विनिष्ट हो जाने की दुखती अनुभूति। स्नेह निर्झर वह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, आम की वह डाल जो सूखी दिखी कह रही है अब यहाँ पिकया सिखी नहीं आते। पंक्ति में वह हूँ लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। दिया है मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल। पृष्ठ संख्या 66 पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। अपनी सूखती हुई स्रोतहीन होती हुई काव्य ऊर्जा के लिए निराला ने यहाँ आम की सूखी डाल का बिंब लिया है। संपूर्ण कवि जीवन वृक्ष में वह एक सूखी हुई डाल निरर्थक पंक्ति की तरह जड़ लिखी हुई पड़ी है। उसका स्वर, उसका नृत्य, उसकी काकली, उसका ऊर्जस्वित आनंद तिरोहित हो गया है, क्योंकि उसे सींचने वाला जीवन रस स्रोत सूख गया है। लेकिन कवि में अपनी काव्य ऊर्जा के गहरे प्रतिदान का गर्व अभी बरकरार है। वह जानता है कि उसने फलों फूलों से सचराचर जीवन को समृद्ध और सुगंधित किया है। उसकी हरियाली छाया में उसकी पत्तियों पर नाचती चकाचौंध मचाती किरणों के खेल से सभी आश्चर्यचकित रह गए हैं। लेकिन नियति का वही क्रूर पंजा बड़ी निष्ठुरता से उन्हें मसल गया है। फूटते हुए लालिम पत्तों की तरह उल्लास के वह क्षण मन में दुख की एक अमर स्मृति छोड़ गए हैं। इसी विनष्ट जीवन के अतीत सौंदर्य को स्मरण करता हुआ कवि अपने एक अगले गीत में दुखता रहता है अब जीवन पतझड़ का जैसा वन उपवन, कहकर उस दमन दाह को वर्तमान में खींच लाता है।